اس حدیث شریف کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ اس کو ام السنن بھی کہا جاتا ہے، ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، ام الجوامع بھی کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال والی حدیث بسم اللہ کے درجے میں ہیں اور یہ حدیث سورہ فاتحہ کے درجے میں ہیں۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نمایاں طور پر تشریف فرما تھے۔ بارزن کے معنی نمایاں طور پر لوگوں کے لیے تشریف فرما تھے۔ یہ ابتدائی زمانے کے اندر ایک لمبے عرصے تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ تمام صحابہ کے ساتھ گھل مل کے بیٹھتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کون صحابہ ہے، اس طرح خلط ملط ہو کر گھل مل کر کے بیٹھتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع کی بات ہے۔ ایک لمبے عرصے تک یہی معمول رہا، اس میں تکلیف یہ ہوتی تھی کہ کوئی آدمی باہر سے آتا، کوئی سائل آتا یا کوئی ایمان سیکھنے کے لیے آتا تو اس کو آنے کے بعد باقاعدہ پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پوچھنا پڑتا تھا لوگوں کو، اور پوچھنے کی آنے والوں کو زحمت ہوتی تھی۔ اب مثلاً مجلس چل رہی ہے اور کوئی نیا آدمی باہر سے آوے اور وہ حضور کو جانتا پہچانتا نہیں ہے تو مجلس کے دوران ہی آ کر پوچھے بھئی کون تم میں محمد ہے، تو مجلس جو ایک جاری ہوتی اس میں ایک طرح کا خلل ہوتا تھا، خلل کا انداز ہوتا تھا۔ اس لیے بعد میں یہ درخواست کی گئی کہ آپ کے لیے کوئی امتیازی نشستگاہ بنائی جائے، تو صحابہ کی درخواست پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ چوکی ہوتی ہے بیٹھنے کی اونچی، تو مٹی کی ایک امتیازی جگہ بنانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو ابتدائی دور کے اندر تو ایک لمبے عرصے تک حضور اسی طرح بیٹھے کہ آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون اس میں نبی ہے اور کون صحابی ہے۔ بعد میں صحابے کی درخواست پر ایک امتیازی انداز کی جگہ بنائی گئی، وہ بھی مٹی کی بنائی گئی۔ اس مٹی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے تو ذرا الگ تھلگ معلوم ہوتے تھے کہ یہ ان کے معلم ہے یا ان کے مربی ہے یا یہ نبی ہے، اور یہ باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ متعلمین ہیں، یہ صحابہ ہے۔ یہ بعد کے زمانے کی بات ہے۔ اسی سے شراح نے استدلال کیا ہے کہ معلم کے لیے امتیازی جگہ بنانے کی گنجائش ثابت ہوتی ہے، چونکہ یہ جو واقعہ ہے وہ زندگی مبارک کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے بعد کا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے۔ तो हज्जतुल विदा तो सन 10 हिजरी के अंदर हुआ, तो हज्जतुल विदा से पहले हो या हज्जतुल विदा के बाद में हो, हयात मुकद्दसा के आखिरी अय्याम का ये वाकिया है। और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी अलग थलग नशिस्तगाह बना दी जा चुकी थी। मालूम हुआ कि मुअल्लिम के लिए वाइस के वास्ते एक इम्तियाजी बैठक बनाना जायज़ है, और वो तवाज़ु के ख़िलाफ़ नहीं है। दरअसल उसके अंदर मुअल्लिम को या वाइस को इम्तियाजी मर्तबा देना नहीं है, बल्कि इसका मकसद हुआ करता है दूसरे लोगों की सहूलत, कि दूसरे लोगों को सहूलत हो जाए कि भाई ये मुअल्लिम है, ये वाइज है, ये सिखाने वाले हैं, लिहाजा उनको एक इम्तियाजी जगह पर बैठा जाए, बिठाया जाए, ताकि तालिबीन के लिए, साइलीन के लिए और नव वारिदीन के लिए, नए आने वालों के लिए सहूलत हो जाए। इसके पेश नज़र ये इम्तियाजी जगह उनको दी जाती है। तो बारिजन का मतलब यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इम्तियाजी अंदाज के अंदर नुमाया तौर पर लोगों के लिए तशरीफ़ फरमा थे। फ़अताहु रजुलुन, इतने में एक शख्स आए, यहाँ रिवायत में बस इतना है कि एक शख्स आए, लेकिन दूसरी हदीसों में है कि आने वाले शख्स ने बहुत ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, आने वाले के बाल बिल्कुल सियाह थे, एकदम काले थे, आने वाले के कपड़ों के ऊपर खुशबू लगी हुई थी, ये भी दूसरी रिवायतों में आया है। क्या खुलासा? कि ये आदमी जिस अंदाज में मजलिस में आए, लगता ऐसा था कि ये मुसाफिर नहीं है, चूँकि मुसाफिर होवे तो कपड़े गर्द गुबार वाले होवे, बदन पर मैल के आसार होवे, लेकिन ये तो एकदम कपड़े सफ़ेद साफ सुथरे, बाल पर भी कहीं मिट्टी और गर्द का नामो निशान नहीं, बाल भी एकदम काले और खुशबू भी लगी हुई। जाहिर है कि मुसाफिर तो परागंदा हाल हुआ करता है, जैसे कि आज देख रहे हैं बहुत सो को। तो इस तरीके से तो आने वाले ये जो फ़र्द थे, उस आने वाले फ़र्द के अंदर दो मुतजाद बातें थी। पहली मुतजाद बात ये थी कि इनके बदन की ज़ाहिरी हैयत ये बतला रही थी कि आदमी मदीना में रहते हैं, मदीना ही में उनका मकान है, अपने घर से तैयार होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस अक़दस के अंदर हाजिर हुए, जबकि आने वाले शख्स को पूरे मजमे में कोई जानता ही नहीं, कोई पहचानता ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि आदमी कोई बाहर का है, परदेसी है, मुसाफिर है। तो दो मुतजाद बातें हुई। अगर ये आदमी मदीना के मुकीम है तो कोई ना कोई तो जानता, क्योंकि मदीना की आबादी छोटी सी महदूद, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे वाकिफ थे तकरीबन, लेकिन ये आदमी मदीना के थे नहीं, कोई सहाबी जानता ही नहीं इनको, ये कौन आए, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवलन इनको नहीं पहचाना, और बाहर के होते तो परागंदा हाल होते, लेकिन परागंदा हाल भी नहीं है, इसीलिए अजीब कैफियत में आए। इसीलिए बाज़ रिवायत में है कि वल्लम युरा अलैही असरुस सफ़र, कि उनके ऊपर सफ़र के आसार कोई नज़र नहीं आए। मालूम हुआ कि हर मुसाफिर के ऊपर सफ़र के कुछ न कुछ आसार हुआ करते हैं। सफ़र से आवे तो चेहरे पर, कपड़े के ऊपर, आँख में कुछ न कुछ आसार हुआ करते हैं कि भाई नींद का खुमार है, चेहरे से थकन के आसार महसूस हो रहे हैं, कुछ न कुछ असरात होते हैं। लेकिन ये आने वाले की अजीब बात थी कि ये मदीना के भी नहीं हैं और इन पर सफ़र के भी आसार नहीं हैं। और आने के बाद इस शख्स ने पहला काम किया मल ईमान, फकाल मल ईमान, अजीम सवालात शुरू कर दिए। आते ही आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछने लगे कि ईमान क्या चीज है, किसको ईमान कहते हैं। तो बाद हजरत ये कहते हैं कि इस सवाल का मंशा था ईमान शरई मालूम करना, मल ईमान, ईमान शरई मालूम करना। और बाद हजरत ये कहते हैं कि मोमन बीही को मालूम करना था कि किन किन चीजों के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, किन किन चीजों को मेरे लिए मानना जरूरी है। ये इनके सवाल का मकसद था मल ईमान वाले लफ्ज के जरिए से। जब इन्होंने सवाल किया तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब देने शुरू फरमाए। अब इससे मालूम हुआ कि अगर कोई साइल किसी दीनी उमूर के मुतालिक सवाल करने के लिए आए, चाहे आप उसको पहचानते न हो, लेकिन जब वो दीनी उमूर के मुतालिक सवाल करे तो उसको जवाब देना चाहिए, उसको रहबरी करनी चाहिए। अब यहाँ इस आने वाले साहिल को कोई पहचानता नहीं, उसने आकर के सीधा इतना बड़ा सवाल किया अमल ईमान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब भी देना शुरू फरमा दिया, जवाब भी बतलाना शुरू फरमा दिया। तो ये नतीजा उससे निकलता है कि कोई साहिल अगर कोई सवाल करे और आप उससे मुतारफ न हो तो भी उसको जवाब देना चाहिए। बस इतनी बात जहन में रखने की कि उसके सवाल में और हमारे जवाब में किसी तरह के फितने के खड़े होने का अंदेशा न हो, तो उसको सवाल जवाब में कोई हर्ज नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व बिलिकाइहि, अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व बिलिकाइहि व रुसुलि व तुमिन बिल बअथि। अब जवाब जो दिया तो उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़े ईमान इस्तेमाल फरमाया, अल ईमानु अन तुमिना। तो बज़ाहिर यहाँ तकरार का अंदेशा होता है, तकरार का अंदेशा होता है, लेकिन ये तकरार नहीं है। एक जो है ईमान लुगवी मुराद ले लो और दूसरा ईमान इस्तिलाही मुराद ले लो। तो ईमान लुगवी और ईमान इस्तिलाही मुराद ले लेंगे तो किसी तरह की तकरार का अंदेशा बाकी नहीं रहेगा। और ऐसे तकरार उस जगह के ऊपर मुजिर या ये के बेफायदा समझा जाता है जहाँ पर तकरार की वजह से कोई जदीद फायदा हासिल ना होता हो, जहाँ पर लफ्ज़ की तकरार से कोई न कोई मानवी फायदा हासिल होता हो, तो वहाँ तकरार जो है बेफायदा कही जाती नहीं है। यहाँ देखिए, उस आने वाले ने इतना अजीम सवाल किया है, लिहाजा उसके सवाल का जवाब उसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए लफ्ज़ को दोहराया जाए ताकि अच्छी तरह उसको बात समझ में आ जाए। ये एक मुस्तकिल नफ़ा और फ़ायदा है, ये कोई तकलीफ की चीज़ नहीं है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही। ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाओ। अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब ये है अल्लाह ताला को एक मानो, अल्लाह की ज़ात और सिफात पर ईमान लाओ, वाजिबुल वजूद समझो, माबूदे हकीकी समझो, इबादत में ला शरीक लहू समझो और इताअत मुतलका समझो, कि अल्लाह ताला की इताअत, इताअत मुतलका, कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म भी आएगा उसकी हमें मुतलक इताअत करनी है। ये है अन तुमिन बिल्लाह का मतलब। नंबर दो, और अल्लाह ताला के फरिश्तों के ऊपर तुम ईमान ले आओ। फरिश्तों पर भी इजमाली तौर पर ईमान लाना काफ़ी है कि ये अल्लाह ताला की एक मखलूक है, जो अल्लाह की एक नूर से बनाई गई मखलूक है, और अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ कामों के ऊपर मामूर किया है और वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, और अल्लाह ने उनको जो काम भी करने के लिए फरमाया है वो काम वो करते हैं। ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम वयफअलून मा युअमरून, ये ईमान रखे हम मलाइका के बारे में। बाकी इनकी तादाद और तफसीलात के बारे में ईमान रखना ज़रूरी नहीं है, मुजमल ईमान भी उनके बारे में काफ़ी हो जाएगा। जिस कदर तफसीलात नुसूस में सही तरीक से वारिद हुई है वो हमारे इल्म में हो ये काफ़ी है। वबिलिकाइहि, और अल्लाह ताला की मुलाकात के ऊपर ईमान लाओ, और अल्लाह ताला की मुलाकात पर ईमान लाओ। अल्लाह ताला की मुलाकात का एक मतलब ये है कि आखिरत में अल्लाह ताला की रूयत नसीब होगी, इस पर ईमान लाना कि मरने के बाद आखिरत में बारी ताला की रूयत और बारी ताला का दीदार और बारी ताला की जियारत नसीब होगी। नंबर दो, बाद हजरात ये कहते हैं कि मौत के बाद भी ये चीज़ हो सकती है कि इंसान की मौत हो गई, उसके बाद फौरन उसको अल्लाह ताला के दरबार में पेश किया जाए, अल्लाह के दरबार में उसको हाजिर किया जाए। नंबर तीन, कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में तो अल्लाह के दरबार के अंदर पेशी होनी ही होनी है, और उसमें तमाम लोगों की पेशी अल्लाह के दरबार में होनी है। ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पर हो सकती है, आखिरत में बारी ताला की रूयत का यकीनी होना, मौत के बाद दरबार इलाही में पेशी का होना, कयामत के दिन कब्र से उठने के बाद हिसाब और सवालात के लिए अल्लाह ताला के दरबार के अंदर पेश किया जाना। काफिरों को अल्लाह सुबहानहु व ताला की रूयत वाली नेमत से महरूम किया जाएगा, इसलिए कि बारी ताला की रूयत एक नेमत उज़्मा है, बहुत बड़ी सआदत है, और इस नेमत उज़्मा से काफिरों को महरूम किया जाएगा। इसलिए कयामत के दिन ये अहले ईमान के लिए एक खुसूसी चीज़ होगी कि उनको अल्लाह ताला की रूयत नसीब हो, अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो। व रसूली ही, और अल्लाह ताला के रसूलों के ऊपर तुम ईमान ले आओ कि जितने भी लोगों को अल्लाह ताला ने वही तशरीई की दौलत से नवाजा, वो तमाम अंबिया और रसूल की सच्चाई पर मैं ईमान रखता हूँ। अब इनकी तादाद कितनी, तो तादाद पर ईमान रखना कोई ज़रूरी नहीं है, चूँकि अलग अलग रिवायात आई है तादाद के सिलसिले में, इसीलिए मुतायना तादाद के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी नहीं। बस इतना इजमाली ईमान काफ़ी है कि अल्लाह सुबहानहु व ताला ने जितने भी अम्बिया जितने भी रसूल मबऊस फरमाए उन तमाम के ऊपर जो है मैं ईमान रखता हूँ, ये इजमाली ईमान काफ़ी हो जाएगा। वतुमिना बिलबासी, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के ऊपर ईमान लावे, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के ऊपर ईमान लावे। देखिए अंदाज देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का। अंतु मीना फरमाया उसके ज़ेल में बिल्ला व मलाइकतिही व बिलिकाइही व रसूलिही, चार चीजें आई। और बास की जब बात आई तो तू मीनू को दो बार इरशाद फरमाया बास के लिए, व तू मीना बिल बास। हालांकि इस तरह कर सकते थे कि बिल बास को भी माकबला के जिम्न में लाया जाए, मसलन यूं अंतु मीन बिल्लाही व मलाइकतिही व बिलिकाही व रसूलिही व बिल बासी। जिस तरह पहले चार चीजें तू मीनू के जेल में आई, ये बास भी तू मीनू के जेल में आता, लेकिन बास के लिए तू मीना अलग से इस्तेमाल हुआ। शुराए हदीस ये फरमाते हैं कि ये जो पहली चार चीजें हैं, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह ताला की मुलाकात पर ईमान और अल्लाह ताला के रसूलों के ऊपर ईमान, ये सब चीजें ऐसी है कि इस वक्त के ऊपर इसका वजूद फी नफ्सी ही है। इन तमाम चीजों का वजूद फी नफ्सी ही है, जबकि बास बादल मौत का वजूद अभी हुआ नहीं, उसका वजूद आइंदा जमाने के अंदर होने वाला है। चूंकि अल्लाह ताला की जात हमेशा से हमेशा मौजूद, मलाइका अल्लाह ने जब से पैदा किया तब से मौजूद, अल्लाह ताला की मुलाकात जितने मर रहे हैं वो आखिरत में जाके अल्लाह के दरबार में पेश हो रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन तमाम नबी दुनिया में आके वक्त गुजार के चले गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए चले गए फिर आएंगे। गोया ये सब चीजें ऐसी है जो इस वक्त तक वजूद में आ चुकी है, जबकि मरने के बाद जो दोबारा जिंदा होना है महशर वाला सिलसिला वो अभी वजूद में आया नहीं, एक नया मुस्तकिल सिलसिला है जो बाकायदा वजूद में आएगा आइंदा चल कर के। इसीलिए उसकी अहमियत और उसकी ताकीद को बतलाने के लिए फरमाया वतुमिन बिल बासी के, मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर तुम ईमान लाओ, कयामत की जिंदगी पर, आखिरत की जिंदगी पर तुम ईमान लाओ। दूसरा एक हल समझो, पहली जो चार चीजें हैं वो किसी न किसी दर्जे के अंदर लोग उसको मुशाहदे में मालूम कर चुके थे, अल्लाह सुबहानहु व ताला की कुदरत के बेशुमार दलाइल इस कायनात के अंदर मौजूद है। इंसान के अपने मुशाहदे से भी बढ़कर इंसान अल्लाह ताला के वजूद का यकीन रखता है। मलाइका तो अरब के मुशरिकीन मलाइका के तसव्वुर के कायल थे, इसीलिए तो मलाइका को अल्लाह की बेटियां मानते थे। वजअलल मलाइकतल्लज़ीनहुम इबादुर्रहमानी इनासा, तो ये इसके लोग कायल थे इसके भी। और रहा ये कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें इन्होंने साबिका आसमानी किताबों के जरिए यहूद नसारा के जरिए से सुन भी रखी थी और आखिरी नबी उनके दरमियान में मौजूद भी है। तो ये सब चीज़ें किसी न किसी दर्जे के अंदर मुशाहदे की थी, जबकि बास बादल मौत ऐसी चीज़ है कि अभी उसका कोई मुशाहदा नहीं था। ऐसी ये अहमियत वाली चीज़ थी, इसीलिए लगता ऐसा है कि उसको पूरे मुअक्कद अंदाज के अंदर बतलाने के लिए दोबारा फरमाया वतुमिन बिल बासी, कि एक नया सिलसिला भी आने वाला है। मौजूदा कायनात के सिलसिले के फना होने के बाद एक नया सिलसिला मरने के बाद की जिंदगी का, उसके ऊपर भी तुम ईमान ले आओ। ये है ईमान का खुलासा। अब देखिए यहां साहिल ने मल ईमान कहकर के जो सवाल किया, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ईमानियात नहीं बतलाए बल्कि ईमानियात में से चंद चीजें हुजूर ने बयान फरमाए, चंद चीजें। मालूम हुआ कि कोई आदमी किसी चीज के बारे में सवाल करे तो उसकी जमीए तफसीलात बतला देना जरूरी नहीं, सामने वाले के ऊपर वो चीज किसी दर्जे में वाजे हो जावे ये भी काफी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सवाल था मल ईमान, तो हुजूर ने अल्लाह, फरिश्ते, अल्लाह की मुलाकात, रसूलों पर ईमान, बास बादल मौत पर ईमान, ये मोटी मोटी चीजें पांच के करीब हुजूर ने बतला दी, उसी पर इक्तिफा फरमाया। हालांकि ईमानियात इसके अलावा भी है, वल कदर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, कुल सिरात, जन्नत जहन्नम, मीज़ान, ये सब चीज़ों पर ईमान लाना, तो ईमानियात तो और भी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मोटे मोटे ईमानियात इनको बतला दिए। तो गोया कि किसी चीज़ के सवाल के मौके पर जमीए तफसीलात बतलाना ज़रूरी होती नहीं है, किसी कदर उसका तआरुफ वजाहत से कर दिया जाए ये भी काफ़ी हो जाता है। जब ईमान के मुतालिक ये बातें बतला दी, कालम अल इस्लामो, तो साहिल ने पूछा कि इस्लाम क्या चीज़ है, साहिल ने पूछा कि इस्लाम क्या चीज़ है। قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به। अब इस रिवायत से बहुत मजबूत तरीके से साबित हो गया कि ईमान और इस्लाम दोनों अलग अलग चीज है। इसीलिए तो आने वाले साहिल ने ईमान के बारे में मुस्तकिल सवाल किया, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का मुस्तकिलन जवाब दिया, साहिल ने इस्लाम के बारे में मुस्तकिल सवाल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल जवाब दिया। ईमान का मुस्तकिल सवाल, इस्लाम का मुस्तकिल सवाल, दोनों के बारे में जवाब भी मुस्तकिलन, मालूम हुआ कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कौलम अल इस्लाम, साहिल ने पूछा इस्लाम क्या है। قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो। इबादत ऐसे तो जाहिरी आज़ा से होने वाली इबादत को हम उर्फ में इबादत से ताबीर करते हैं, इंसान जाहिर बदन से जो इबादत करेगा, इसीलिए हमने इबादत की तीन किस्में पढ़ी है, इबादत बदनी, इबादत माली और इबादत मुश्तरक बैनल माल वल बदन। तो ज़्यादातर जाहिरी आमाल से अंजाम दी जाने वाली इबादतों को हम इबादत से ताबीर करते हैं, चाहे वो बदन से हो चाहे वो माल से ताल्लुक रखती हो। लेकिन एतकादाते बातिनिया के ऊपर भी इबादत का इतलाक होता है कि आदमी अपने कल्ब से जो सही अकीदा रखता है उसके ऊपर भी इबादत का इतलाक हुआ करता है। तो फरमाया अल इस्लाम अन तअबुदल्लाह, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, वला तुशरिक बिही, और तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करो। यहाँ मुस्बत मनफी दोनों बात आ गई, अल्लाह की इबादत करो ये मुस्बत, वला तो शरीक भी मनफी, चूँकि एतकादात शरीयत के अंदर सबसे अहम चीज़ है, लिहाजा उसको मुस्बत और मनफी दोनों अंदाज के अंदर बयान कर दिया गया। और इबादत ज़ाहिरिया के अंदर भी अल्लाह ताला की जो इबादत है वो इतनी अहम है कि उसको मुस्बत और मनफी दोनों तरीके से बयान किया गया कि भाई एक अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह ताला के साथ इबादत में किसी को शरीक करना हरगिज नहीं है। वतुकी बसला, और तू नमाज को कायम करे। बाज़ रिवायत में मकतूबा का लफ्ज़ भी है, کہ فرض نمازوں کو قائم کرنا، اس لیے کہ دن رات میں جو نمازیں فرض ہیں وہ شریعت کے اندر اصل سمجھی جاتی ہے، اور نوافل تو اس کے تابع ہوا کرتے ہیں. وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور فرض زکاۃ کو تو ادا کرے، فرض زکاۃ کو تو ادا کرے، یعنی جو زکاۃ فرض ہے. معلوم ہوا کہ دیگر صدقات نافلہ پر بھی لفظ زکاۃ استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں المفروضہ کی قید آئی. دیگر جو صدقات نافلہ ہے اس پر بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ کہ تم فرض زکاۃ کو ادا کرو، وتصوم رمضان، اور یہ کہ تم رمضان کا روزہ رکھو، اور دوسرے طرق کے اندر حج کا تذکرہ بھی ہے، دوسرے روایتوں میں حج بھی ہے. اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعارف میں کیا بتلایا، نمبر ایک اللہ کی عبادت کرنا، نمبر دو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر تین فرض نماز قائم کرنا، نمبر چار فرض زکاۃ دینا، نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا، اور دوسرے طرق میں ہے حج، گویا حج ادا کرنا. گویا ایمان اور اسلام کے جواب میں تقریباً 11 کے قریب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. تو اس طریقے سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کا تعارف کرایا کہ یہ ہیں ایمان اور یہ ہیں اسلام. یہاں پر بھی وہ بات یاد رکھنے کی کہ سائل نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اسلام نہیں بتلایا ہے، اسلامیات کے تمام امور نہیں بتلائے ہیں. اسلامیات کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں تھیں بس وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی، چونکہ اسلامیات میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے امور ہیں، تو وہ دوسرے امور کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا. قال ما الاحسان، تو اب سائل نے سوال کیا احسان کیا چیز ہے. یہاں احسان کو بہت سے حضرات نے اخلاص کے معنی میں لیا ہے کہ اخلاص کیسے ہے اور اخلاص کیسے پیدا ہوگا، اور احسان کو احسان کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ بھائی احسان کیا چیز ہے. مل احسان، قال ان تعبد اللہ کانک تراہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو، یہ ہو گیا احسان. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو تو یہ کیفیت پیدا کرنا تو بہت آسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اب اس میں کئی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ذکر کرتے ہیں. قَالَ مَتَ السَّاعَةُ، سائل پوچھنے لگے قیامت کب آئے گی. سائل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. معلوم ہوا کہ قیامت کی ٹائمنگ اور اس کے وقت کے بارے میں دور رسالت سے لے کر آج تک دنیا اس سوال جواب کے چکر میں لگی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ایک مستقل کام تھا، اور آج کے زمانے تک یہ سلسلہ برابر دنیا میں جاری ہے. متسا، قیامت کب آئے گی. اس وقت بھی دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کو کرنا ورنہ کچھ نہیں، اور وہ رات دن یہی بیٹھے ہوئے ہیں قیامت کتنی نزدیک ہے، کتنی علامات ظاہر ہو گئی، کتنی باقی ہے، और जितनी भी अलामात जाहिर होती है उसको जो है यानी जितने भी हालात जाहिर होते हैं उसको किसी तरह भी मोड़ जोड़ के कयामत के साथ फिट कर देना, ये इस वक्त एक जमात का मुस्तकिल मशगला है। और इंटरनेट पर भी इनके बड़े बड़े ग्रुप हैं ऐसे लोगों के। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश मक्का भी यही कहते थे, बल्कि इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये नकल किया है कि कुरैश बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराबत का वास्ता देते थे, रिश्तेदारी का, कि आप भी कुरैशी हम भी कुरैशी, आपका और हमारा ख़ानदान एक ही है, आप हमको तो प्राइवेट में बतला दो कि कयामत कब आने वाली है, दूसरों को ना बतलावे, हम तो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, हमको तो प्राइवेट में ही बतला दो कि कयामत कब आने वाली है। तो पूछा कि मतस्सा कयामत कब आएगी। अब यहाँ एक इश्काल पैदा होता है कि ईमान का सवाल चल रहा है, इस्लाम का सवाल चल रहा है, और ये कयामत के बारे में सवाल करने की ज़रूरत क्या है। ये सवाल कुछ बेजोड़ किस्म का मालूम हो रहा है, बेरब्त किस्म का सवाल मालूम हो रहा है। एक तरफ ईमान इस्लाम एहसान की बात चल रही है, एकदम ये कयामत की बात कैसे आ गई। तो उसका हल समझो, हुज्जतुल इस्लाम हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बहुत प्यारी एक तौजीह की है। फरमाते हैं कि ईमान इस्लाम के सवाल के ज़ैल में कयामत के मुतालिक सवाल करना ये बेजोड़ नहीं है, बिल्कुल बेजोड़ नहीं है। कैसे, इसको एक मिसाल से समझो कि एक अजीमुशान जलसा होने की तैयारी हो रही है, शामियाना लग रहा है, स्टेज बन रहा है, माइक का इंतज़ाम हो रहा है, ये सारी तैयारियां हो रही है। भाई क्यों हो रही है, आखिर एक जलसा है इनकी दस्तारबंदी का, कहा अच्छा ये जलसा कब ख़त्म होगा। तो कहा भाई जब इतने प्रोग्राम है, इतनी मजलिसें हैं, जब उस वक्त ये जलसा ख़त्म हो जाएगा। कहा शामियाना कब उठाया जाएगा, कहा ये शामियाना ये मंडप जो है जिस वक्त पर जलसा ख़त्म होगा तो शामियाना उठा दिया जाएगा। अब कोई आदमी ये कहे कि भाई देखो ना इस आदमी ने जलसे की तैयारी की बात पूछी और साथ में एकदम पूछ लिया कि शामियाना कब उठाया जाएगा, ये बेजोड़ किस्म का सवाल। तो लोग क्या कहेंगे उसको कि नहीं इसमें कोई बेजोड़ बात नहीं है, ये सब जोड़ की बात है कि भाई जलसा मुनक़िद होना तय हुआ तो इस गर्ज से शामियाना बनाना तय हुआ। अब जाहिर है कि जलसा हमेशा तो होता नहीं, वो तो कभी कभार होता है, तो जब जलसा ख़त्म होगा तो शामियाना कब उठाया जाएगा, एक दूसरे के साथ लगी लिपटी हुई चीज़ है, लाजिम मलजूम चीज़ है। तो कहा इस कायनात की बज़्म के सजाए जाने का बुनियादी मकसद है ईमान इस्लाम दीन और एहसान का, इसीलिए ये कायनात की बज़्म सजाई हुई है ईमान इस्लाम दीन और एहसान के खातिर। तो कहा कि जब साहिल ने ये सवाल किया कि मल ईमान मल इस्लाम, तो साहिल ने ये भी पूछ लिया साथ साथ के अंदर कि ये बज़्मे कायनात का इख्तिताम कब होगा और ये जलसे कायनात का इख्तिताम कब होने वाला है, और ये कायनात की शक्ल में ज़मीन आसमान ये शामियाना जो लगाया गया है किस वक्त के ऊपर ये शामियाना उठा लिया जाएगा, और उसी को कहा जाता है कयामत। तो गोया कि ये सवाल कोई बेजोड़ नहीं है बल्कि जो है ऐन जो है मुनासिब और मुआफिक सवाल है, ये गैर मरबूत सवाल नहीं है। कालम हतस्सा, साहिल ने पूछा कि कयामत कब कायम होगी। कौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मल मसूल बिअअलम मिन साइली। मसूल के माने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, और साइल से मुराद है आने वाला शख्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको सवाल किया जा रहा है वो साइल से ज़्यादा वाकिफ नहीं है कयामत के मुतालिक, जिससे सवाल किया जा रहा है वो साइल से ज़्यादा वाकिफ नहीं है। क्या मतलब इस जुमले का? नंबर एक, कयामत के अदमे इल्म के सिलसिले में मसूल और साइल दोनों बराबर है। कयामत के रुकू की तायीन के इल्म के सिलसिले में मसूल और साइल दोनों बराबर है। कयामत आना ये तय है, लेकिन कयामत यकीनन कब आएगी, उसका वक्त कौन सा, उसमें मसूल और साइल दोनों के दोनों यकसा और बराबर बराबर के दर्जे के अंदर है। अदम इल्म ताईन वक्त के बारे में। नंबर दो, किसी भी साइल या किसी भी मसूल को कयामत का इल्म नहीं है। जुमले का दूसरा मतलब, किसी भी साइल को, यानी ए साइल जो मुझे पूछ रहा है और मसूल मैं जवाब दे रहा हूँ, हम दोनों की बात नहीं, किसी भी साइल को और किसी भी मसूल को कयामत की ताइन का इल्म नहीं है। होया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में उमूम फरमाया कि ये साइल क्या, दुनिया का कोई भी साइल और आखिरत का कोई भी साइल, ये मसूल किया कोई भी मसूल, उसको कयामत कब आने वाली है उसका इल्म नहीं है। ये जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाया। कालमल मसूल बि अअलम मिन साइली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसूल यानी जिससे सवाल किया जा रहा है वो साइल से ज्यादा जानकार नहीं है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि इब्तिदान अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान नहीं पाए हो कि ये साइल कौन है, लेकिन दरमियाने गुफ्तगु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहचान लिया कि ये साइल कौन है, ऐसा अंदाज़ा होता है। और दूसरी बात ये है कि कयामत ऐसी चीज़ है कि उसके वक्त की तायीन अल्लाह सुबहानहू व ताला के अलावा किसी के पास नहीं, इसीलिए कि सैयदुल मखलूकात हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब सैयदुल मखलूकात को उसका इल्म नहीं है तो किसी और को तो बदरजे औला उसका इल्म हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है जब सैयदुल मखलूकात को न होए तो। यहाँ तक के जो फरिश्ता सूर फूकने के ऊपर मामूर है उस फरिश्ते को भी मालूम नहीं है कि कयामत कब वाक़ होने वाली है, किस दिन वाक़ होगी, उसका कौन सा वक्त होगा, कौ उसकी तायीन कब है। वसअख़बिरुका अन अशरातिहा, और मैं अन करीब तुझको उसकी अलामतों के बारे में बतलाऊंगा। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझको उसकी अलामत के बारे में कुछ बातें बतलाऊंगा। देखो, अशरात और आयत के दरमियान में फ़र्क है। अशरात कहते हैं छोटी छोटी निशानियों को और आयत कहते हैं बड़ी बड़ी निशानियों को। मैं कयामत की कुछ छोटी निशानियां तुझे बतलाए देता हूँ। वसअख़बिरुका अन अशरातिहा, मालूम हुआ कि किसी ने कोई सवाल किया हो तो उसके सवाल से ज़ाहिद मुफीद बातें बतला देना ये भी अच्छी बात है, ये कोई जो है नामुनासिब बात नहीं है। साहिल ने मतस्सा कहकर के सिर्फ कयामत का वक्त पूछा था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से उसकी अशरात और अलामतें भी बयान फरमाई। मालूम हुआ कि उन्होंने जितना सवाल किया था उसके ऊपर कुछ मुफीद और जायद बातों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमा दी। ये है आपकी रहमत और शफकत की बात। अब यहाँ जो अशरात की बात है तो उसके अंदर शुर्राह दो बातें फरमाते हैं, एक तो है आम अशरात और दूसरा है मोहताद अलामा, कि कयामत के मुतालिक जो आम और मोटी मोटी और आदतन पेश आने वाली जो अलामतें हैं वो मैं तुमको बतलाए जा रहा हूँ। इसीलिए आगे देखिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उमूमी और मुअताद और आम अंदाज में पेश आने वाली अलामतों को बयान फरमाया है, कोई खुसूसी अलामतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाया। यहाँ रुक कर एक बात ये समझ लो कि कयामत की अलामतें मुख्तलिफ किस्म की हैं, मुख्तलिफ अंदाज की कयामत की अलामतें। नंबर एक, अलामाते बईदा। नंबर दो, अलामाते मुतवस्सिता। नंबर तीन, अलामाते करीबा। ये हैं जमान के एतबार से कयामत की तीन किस्म की निशानियाँ। अलामाते बईदा यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कयामत की निशानी बतलाई जो कयामत से बहुत पहले दूर के ज़माने के अंदर वाक़े होती है। जैसे कि एक आदमी अहमदाबाद की तरफ से बारडोली आ रहा हो तो कीम पास करने के बाद भी शाइन बोर्ड आ जाए कि बारडोली कितने किलोमीटर, ये हो गई अलामत बईदा। कभी तो 40-50 किलोमीटर बाकी है और बोर्ड आ गया कि बारडोली यहाँ है, यही कि यहाँ से अहमदाबाद जाने निकले तो कड़ोदरा पहुँचे नहीं कि अहमदाबाद के बोर्ड आने शुरू होंगे, इधर अहमदाबाद इधर अहमदाबाद, हालांकि 325 किलोमीटर अभी दूर है। तो हो गई अलामत बईदा। तो खुद जो हदीस में आपने मिश्कात शरीफ में पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बैसत ये भी कयामत की एक अलामत है, तो वो है अलामत बईदा। शक्कुल कमर का वाकिया, उसको भी जो है कयामत की अलामत कुरान में बतलाया गया, लेकिन वो है अलामत बईदा। तो एक किस्म है अलामत बईदा, दूसरी है अलामत मुतवस्सिता। और अलामत मुतवस्सिता वो हैं कि जो कयामत से बहुत दूर भी नहीं और खुरूज याजूज माजूज खुरूज दज्जाल खुरूज दाब्बा की तरह बिल्कुल करीब भी नहीं, बल्कि वस्त ज़माने के अंदर। और वस्त ज़माने की जितनी भी कयामत की अलामतें हैं वो ज़्यादातर अखलाकी और इल्मी अलामतें हैं, अखलाकी इल्मी। जैसे कि इस रिवायत के अंदर आ रही है अन इदा वलदतिल अमतु रब्बहा, ये सब अखलाकी अलामतें। मसलन जीना काम हो जाना, शराब काम हो जाना, बेहयाई काम हो जाना, ये सब अखलाकी गिरावट वाली अलामत या अलामतें मुतवस्सिता कहलाती है। और तीसरी किस्म है अलामत करीबा, बिल्कुल नज़दीक ज़माने की अलामत, जैसे कि ज़ुहूर मेहदी, खुरूज दज्जाल, नुज़ूल ईसा और खुरूज याजूज माजूज और दाब्बा का निकलना, तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, इसको कहा जाएगा अलामत करीबा। तो ये हैं ज़मान के एतबार से कयामत की अलामतें। अलामत बईदा भी है, अलामत मुतवस्सिता भी है और अलामत करीबा है। उसके बाद फिर दो किस्म, एक है अलामत आम्मा और दूसरी है अलामत खासा। अलामत आम्मा क्या चीज़ होती है कि जो उमूमी तौर पर पूरे आलम के अहवाल के एतबार से पाई जाए, उमूमी तौर पर पूरे आलम के अहवाल के एतबार से पाई जाए। मिसाल के तौर पर जो हदीस में आपने मिश्कात शरीफ में पढ़ा, जितनी भी अखलाकी बुराई की बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि भाई हराम कामों का आम होना वगैरह वगैरह, ये है उमूमी अहवाल के एतबार से। और दूसरी है खुसूसी अहवाल के एतबार से। मिसाल के तौर पर जो आया था कि भाई खसफ का वाक़ होना, कि ज़मीन में धसाया जाना, कि एक खसफ मशरिक में होगा एक मगरिब के अंदर होगा, फिर जानिब मशरिक से एक आग निकलेगी, फिर सफ़ा पहाड़ में से जो है एक जानवर निकलेगा, ये है खुसूसी अहवाल वाली अलामतें। तो एक है आम अहवाले आम्मा पर असर करने वाली अलामतें और एक है अहवाले खासा को जाहिर करने वाली अलामत। मिसाल के तौर पर सूरज का मगरिब से निकलना, ये अहवाले खासा को जाहिर करने वाली अलामत है कि सूरज जानिब मगरिब से निकल आवे। तो वसअखबिरू कान अशरातिहा, मैं अन करीब तुमको उसकी अलामतों के बारे में बतलाऊंगा। बस जरा छुट्टी का खुमार उतर जावे।